पृष्ठ संख्या 227, अध्याय 24, घराने तथा बाज। लखनऊ घराना। दिल्ली घराने के दो महान तबला वादक उस्ताद मोदू खां और बक्सू खां ने अपनी आजीविका के लिए दिल्ली से लखनऊ प्रयाण किया। कदाचित लखनऊ के नवाब ने उन्हें आमंत्रित किया होगा। लखनऊ के नवाब और तमाम लखनऊ शहर की संस्कृति कथक नृत्य की शौकीन थी। लखनऊ के संगीत पर कथक नृत्य का बड़ा प्रभाव था। अत्यंत श्रेष्ठ कथक नर्तक नर्तिकाएं लखनऊ में जगह जगह अपनी कला पेश करती थीं। पखावज का प्रभाव कम होता जा रहा था, फलतः सात संगत के लिए पखावज की जगह तबले का प्रवेश होने लगा था। कथक नृत्य के प्रस्तुतिकरण में जोरदार एवं जोशपूर्ण वादन की आवश्यकता थी, किंतु उसी समय श्रृंगार और करुण रस की निर्मिति के लिए पोषक नाजुक और लचीली वादन शैली की भी कथक नृत्य के लिए उतनी ही जरूरत थी। इस जरूरत को पूरा करने के प्रयत्न के फलस्वरूप दिल्ली से आए हुए उपर्युक्त दो उस्तादों एवं उनके शिष्यों की वादन शैली में आवश्यक परिवर्तन होता गया। यह नया बाज लखनऊ बाज के नाम से पहचाना जाने लगा। पृष्ठ संख्या 228। इसी बाज को पूरब बाज भी कहते हैं, अर्थात जब पूरब बाज कहा जाता है तब उसमें लखनऊ घराने के दो शिष्य घराने बनारस और फरुखाबाद का अंतर्भाव होता है। इस लखनऊ बाज का स्वरूप निश्चय ही दिल्ली अजराड़ा घरानों की शैली की अपेक्षा अलग एवं स्वतंत्र बन गया है। उक्त लखनऊ वादन शैली के वैशिष्ट्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। पहला, इस घराने में चुने हुए पखावज के बोलों का उपयोग किया जाता है। किनार का उपयोग कम होने लगा और लव तथा स्याही पर आघात करके स्वरमय अक्षर निकालने की शैली पैदा हुई। दूसरा, तबले पर के अक्षर जोरदार एवं खुले बाजों के अंग से बजाए जाने लगे। तीसरा, चाट का उपयोग किया ही न जाए सो बात नहीं, किंतु उसका प्रयोग कम होता है। चौथा, तबले पर नाद निर्माण करते समय एक से अधिक उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा, लखनऊ के कायदे दिल्ली अजराड़े के कायदे की अपेक्षा लंबे आकारों के और अलग शब्द संपत्ति के से रचित होते हैं। छठवां, दिल्ली अजराड़ा के पद्धतियों की तरह लखनऊ की तबला वादक कायदों का विस्तार दीर्घ काल तक नहीं करते। कायदों का संक्षेप में विस्तार करके रेला रव गत टुकड़ा परन चक्रधार फरद आदि वादन प्रकारों पर विशेष बल दिया जाता है। सातवां, धागे तीट तागे तेटे धीट धीट तीट क्रत गदिगन घिड़नग दिगनग धीर धीर किटतक धित धित त्रक धित तकित धा इत्यादि बोलों का इस घराने के रचनाओं में विशेष प्रयोग किया जाता है। फरुखाबाद घराना। फरुखाबाद घराना स्वतंत्र शैली का घराना है। यह लखनऊ घराने का शिष्य घराना है। इस घराने के संस्थापक उस्ताद हाजी विलायत अली खां, लखनऊ घराने के खलीफा उस्ताद बक्सू खां के शिष्य जमात और भी थे। लखनऊ घराने का महत्वपूर्ण खजाना हाजी साहब को उनके ससुर की ओर से उनकी बेटी मोती बीबी से प्राप्त हुआ, किंतु फरुखाबाद घराने ने अपनी एक स्वतंत्र वादन विचार शैली निर्माण की। इस घराने की तालीम प्राप्त किए हुए अत्यंत गुणवान और रियाजी शिष्य स्वयं तो महान कलाकार हो ही गए, किंतु उन्होंने फरुखाबाद घराने को अपने गुरु घराने जितना ही बड़ा स्तर प्राप्त करा दिया। इस घराने के वैशिष्ट्य इस प्रकार हैं। पृष्ठ संख्या 229। इस बाज पर कथक नृत्य का प्रभाव नहीं है। दूसरा, लखनऊ या पंजाब घरानों की अपेक्षा कम जोरदार, किंतु दिल्ली और अजराणा घरानों की अपेक्षा निश्चय ही अधिक जोरदार वादन शैली इस घराने ने अपनाई है। तीसरा, गतें, गतपरन, विविध प्रकार के चलन इत्यादि के प्रस्तुतीकरण में अधिक प्रभाव दिखाई देता है। चौथा, लखनऊ घराने का पेशकार विशेष प्रसिद्ध नहीं था, किंतु फरुखाबाद घराने के द्वारा निर्मित पेशकार इस घराने का खास वैशिष्ट्य बन गया है। उस्ताद अहमद जान थिरकवा यह प्रकार इतने रंगदार रूप में प्रस्तुत किया करते थे कि उससे वह पेशकार हिंदुस्तान भर में अत्यंत लोकप्रिय बन गया, और पेशकार यानि धीक्र धिंधा शब्दों से शुरू होने वाला जो उस्ताद थिरकवा प्रस्तुत किया करते थे वही रचना है, ऐसा समीकरण बन गया। पांचवा, इस घराने में धीरे धीरे किटतक, तकिट धा, तकतक, धात्रक धिकिट, क्रधा धीड़ान इत्यादि शब्दों का काफी मात्रा में खुले हाथों से इस्तेमाल हुआ करता है। छठवां, इस घराने की वादन शैली में नगाड़ा एवं ढोल वाद्यों पर निकलने वाले अक्षरों का भी कलात्मक उपयोग किया जाता है। बनारस घराना। बनारस घराने के आद्य वादक पंडित राम सहाय थे। लखनऊ घराने के खलीफा उस्ताद मोदू खां के पास पंडित राम सहाय जी ने 12 वर्ष तक तबले की शिक्षा ग्रहण की, और उसके बल पर उन्होंने अपनी निजी प्रतिभा से बनारस घराने की स्थापना की। बनारस घराने के वादन पर लखनऊ घराने का प्रभाव होना अपरिहार्य है। कदाचित कथक नृत्य की सात संगत की वजह से हो, किंतु बनारस घराने पर पखावज की वादन शैली का प्रभाव अधिक है। उसी प्रकार इस घराने में दायां बायां खुले हाथ से जोरदार रूप में बजाने की पद्धति प्रचलित है। बनारस घराने में पेशकार के बदले उठान वादन प्रकार से तबला वादन प्रारंभ होता है, उसके बाद एकाध स्वरमय अक्षरों का चलन, त्रिताल का ठेका और उसकी बोल बाट से पेशकार सदृश आरंभ वादन प्रस्तुत होता है। इस प्रस्तुतीकरण में बाएं के दबाव घिसाव से कलात्मक घुमारे के जरिए और नाजुक तथा सुमधुर चाट पर के गूंज युक्त अक्षरों की मदद से धीमी लय में प्रस्तुत की गई बोल बाट युक्त चलन की विस्तार क्रिया आदि के माध्यम से महफिल में रंग भर जाता है। पृष्ठ संख्या 230। इस प्रकार महफिल के जम जाने पर विविध कायदे, रेले, छंद, जोरदार परन, गतें, फरद इत्यादि प्रकारों से बनारस घराने का वादन प्रस्तुत होता है। बनारस घराने का खास वैशिष्ट्य यह है कि उस घराने के कलाकारों ने कई वर्षों तक घंटों जबरदस्त रियाज करके तबला वादन में सिद्धि प्राप्त की है। वे जिन अक्षरों का रियाज करते हैं वे अक्षर मानो जागृत मंत्राक्षर बनकर एक अनोखा कलात्मक प्रभाव प्रस्तुत करते हैं। इस घराने के खास कायदे सुनने में नहीं आते। दिल्ली के लोकप्रिय कायदे इस घराने में अत्यंत फुर्तीलेपन के साथ बजाने का रिवाज है। रियाज इस घराने का अस्थाई भाव होने से दिल्ली के कायदे बजाने के लिए जबरदस्त रियाज करके उन्होंने दो उंगलियों पर का प्रभुत्व भी प्राप्त किया है। परंतु दिल्ली घराने के वैचारिक अनुशासन का प्रयोग इस घराने के वादन में नहीं पाया जाता। वह प्रयोग वैसा होना ही चाहिए, यह जरूरी नहीं है। महत्व की बात यह है कि बनारस के वादक दिल्ली घराने के कायदे दो उंगलियों से अत्यंत तैयारी में तथा मोहक नाद सौंदर्य के साथ प्रस्तुत करने की क्षमता रखते हैं। बनारस घराने का एक लोकप्रिय एवं प्रभावी कायदा नीचे उदाहरण के तौर पर दिया गया है। धिक धीना त्रिकिट धीना धागे ना धिक धीनाड़ा, तिक धीना त्रिकिट तीना धागे न धिक धीनाड़ा। कथक नृत्य के लिए प्रभावात्मक सात संगत करने की शैली इस घराने ने विकसित की है। इस घराने के तबला वादक सर्वसाधारण ऊंचे स्वर के तबले का इस्तेमाल करते हैं और बाएं की दिशा बदलकर स्याही का भाग कलाई की नीचे लेकर एक अलग प्रकार से दबाव घिसाव के तंत्र से बाएं पर कलात्मक विविध अक्षर निकालते हैं। छठवां, पंजाब घराना। पंजाब में महान पखावजी घरानों की परंपरा है। पंजाब घराने के मूल पुरुष लाला भवानी सिंह थे। इसी परंपरा में फकीर बख्श एक महान पखावज वादक हो गए। वे तबला भी बजाते थे। उन्हें पंजाब घराने का खलीफा माना जाता है। उनके सुपुत्र कादर बख्श थे। उनके शिष्य उस्ताद अल्लाह रखा इस घराने के ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ तबला वादक माने जाते थे। उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब के सुपुत्र उस्ताद जाकिर हुसैन तबले का जगत प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। पृष्ठ संख्या 231। पंजाब घराने का सबसे महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य यह है कि दिल्ली या पूरब घराने का प्रभाव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस घराने के वादन पर अंकित नहीं है। इस घराने के बाज की निर्मिति संपूर्णतः पखावज में से हुई है। पखावज खुले हाथों से बजता है। इस हाथ का रखाव बदलकर तबले के योग्य नवीन निकास शैली इस घराने ने निर्माण की। पंजाब के घराने का हाथ का रखाव अन्य घरानों के रखाव से थोड़ा अलग होता है। इसका कारण यही है कि पंजाब घराने ने पखावज के खुले बोल बंद करके बजाने का नया तंत्र निर्माण किया। पखावज का पर्याप्त प्रभाव इस वादन शैली पर होने से पंजाब शैली का तबला अत्यंत जोरदार पद्धति से हुआ करता है। दिल्ली घराने की विशेषता है उनकी रचनाओं की लघुता, तो पंजाब घराने की खासियत है रचनाओं की दीर्घता। गतें, गतपरन, तोड़े आदि सब पंजाब के बाजों में दीर्घ पल्ले के रूप में बांधा गया है। पंजाब के कायदे भी दीर्घ पल्ले के ही होते हैं। पंजाब का तबला विविध लयकारियों की रचनाओं एवं विविध जातियों की तिहाइयों से पेश किया जाता है। इस घराने के तबले में गत टुकड़े की मिश्र जाति की गतें बहुत ही सुंदर रूप में रचित हैं। उस्ताद अल्लाह रखा और उस्ताद अमीर हुसैन खां की बजाई हुई पंजाबी गतें सुनना श्रोताओं के लिए एक दावत ही होती थी। धाड़ धा, दुन दुन, नग नग, धीटत, घीड़त, करधान, धड़न्ना इत्यादि खास पंजाबी शब्द प्रयोगों से पंजाबी तबले की रचनाएं बांधी गई हैं। इन रचनाओं को तबले पर सुनने में आनंद मिलता है। इन रचनाओं में खास पंजाबी बोली भाषा की छाया अंकित होने से इनकी पढ़ंत सुनने में एक अवर्णनीय आनंद की अनुभूति मिलती है।